సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథానితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా శ్రీ విశాఖానితం స హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధ బృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే ఓం నీలాంచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే బలభద్ర సుభద్రాభ్యాం జగన్నాథాయ తే నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ
आज स्नान यात्रा है ज्येष्ठ पूर्णिमा। हम लोगों को साल का 12 महीना अंग्रेजी में याद है, मगर ये जनवरी फरवरी के अलावा और भी कुछ नाम होते हैं उसे, है कि नहीं? हाँ, 12 महीनों का, जैसे गुजरात में कार्तिक से शुरू होता है, कार्तिक से ना, और उड़ीसा में वैशाख से शुरू होता है, और कई जगह पर अलग अलग, बंगाल में अलग शुरू होता है, फाल्गुन से शुरू होता है, अलग अलग
नया कार्तिक नया साल
तो ये 12 महीनों में ज्येष्ठ मास है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष, हर एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस से लेके पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस तक, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं।
15 दिन 15 दिन और पूरा 30 दिन का एक महीना होता है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत जो पूर्णिमा आती है वो पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का जन्म हुआ था और इसीलिए आज वो दिन है और उस दिन को स्नान पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा के रूप में संसार भर में मनाया जाता है। पहले तो केवल उड़ीसा बंगाल के कुछ ही लोग जानते थे, मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरी संसार भर में लोग अभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन है करके। ये जगन्नाथ कल्चर को या ये जगन्नाथ की भक्ति को श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है। प्रभुपाद शुरुआत में जगन्नाथपुरी गए थे इस्कॉन बनाने से पहले, बाद में एक बार इस्कॉन बनाने के बाद अपने शिष्यों के साथ गए, मगर पुरी के पंडे लोगों ने जगन्नाथ जी को अंदर पूरे उनके शिष्यों को अंदर जाने नहीं दिए। तो प्रभुपाद जी ने बोले मेरे शिष्य नहीं जाएंगे अंदर तो हम भी नहीं जाएंगे। उनके शिष्य क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि उनके सारे शिष्य विदेशी थे, ठीक है ना। तो जगन्नाथ मंदिर में एक नियम है कि कोई भी विदेशी मतलब नॉन हिंदू वो नहीं जा सकता, केवल हिंदू लोग ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। जगन्नाथ पुरी में ही नहीं, ऐसे साउथ इंडिया में अनेकों मंदिर हैं, केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंदिर हैं केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, मगर इस्कॉन के फॉरेन डिवोटीज को अलाव है। जैसे श्रीरंगम वगैरह में इस्कॉन के फॉरेनर्स को अलाव है, इनको लोग प्रश्न हो चुके हैं, मगर पूरी के पंडे लोग सुनते नहीं है। उड़िया मतलब तो वो सुने नहीं, तो बेचारे प्रभुपाद गए नहीं। फिर प्रभुपाद ने सब जगह ये जगन्नाथ जी का मंदिर का स्थापना किया, रथ यात्रा किया। अभी पूरी के पंडे लोगों ने इस्कॉन के ऊपर चिढ़ते हैं कुछ लोग, क्योंकि साल भर में कितने सारे रथ यात्रा इस्कॉन करता रहता है हर जगह, है कि नहीं। बॉम्बे में तो साल में कितना कुछ 15-20 से भी ज्यादा रथ यात्रा ऐसे होता रहता है रथ यात्रा। और जगन्नाथपुरी में एक ही बार होता है, तो उन लोगों ने कोर्ट केस भी किया था, मालूम नहीं क्या कि लोग इस्कॉन वाले हमारा कल्चर को बिगाड़ रहे हैं करके ऐसा। तो इस प्रकार से है जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा इस्कॉन का सबसे पहला बड़ा उत्सव है, फर्स्ट मेन फेस्टिवल या बिग फेस्टिवल इस्कॉन का। प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी मनाया था, मगर रथ यात्रा सबसे पहला और बड़ा उत्सव था और पहला विग्रह भी था, शायद जगन्नाथ जी का विग्रह भी था पहला। वो तो कथा पता है ना कैसे प्रभुपाद जी के हाथ में आए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा? नहीं, वो स्टोर से लाए थे ना, स्टोर से मालती माता और श्याम सुंदर। खैर ये सारे कथाएं और धीरे धीरे इसको चर्चा करेंगे, उसके बाद स्नान प्रभु जी को बोला है क्या? तो आज शाम को जगन्नाथ जी के बारे में बताने के लिए बोला नहीं। तो जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है और आप सब जानते रहेंगे भगवान कृष्ण अपने ही कथाओं को सुनते सुनते उनके अंदर महाभाव का प्रकाश हुआ था। ये महाभाव के प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण ये जगन्नाथ जी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। वो कथा सुना आप लोगों ने? कृष्ण अपने ही लीला सुनते सुनते उनके अंदर महाभाव प्रकाश हुआ और जिसके द्वारा उनके हाथ पैर सब संकुचित हो गए और उनके नेत्र विस्फोरित हो गए और उनके मुंह इत्यादि, और इस प्रकार के जगन्नाथ जी के स्वरूप को धारण किए। उस समय ये तीनों भाई बहन का इस रूप को देखकर नारद मुनि वहां पहुंच गए। लेकिन लो ऐसे तो मैं कभी नहीं देखा था, जानवर देखा था। आप जानवर बने थे तब मैंने देखा था, मजा आया था। आधा जानवर और आधा मनुष्य बने थे तब भी मैं देखा था, तब भी मजा आ गया था। मछली भी बने थे तब भी मैंने देखा था, मगर ऐसा रूप पहले कभी मैंने देखा। भगवान फिर अपने स्वरूप में आ गए। नारद मुनि बोले कि अभी छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका इस स्वरूप को देख चुका हूं, तो कृपा करके उसी स्वरूप को सभी लोगों को दर्शन दीजिए उसी स्वरूप से। जगह फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपके विनती को मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। अतः कलयुग में लवण सागर के दक्षिण तट पर मैं इस रूप में विराजमान रहूंगा और कलयुग में सारे पति जीवात्माओं को दर्शन दूंगा। जो भी व्यक्ति एक बार भी आकर उस समुद्र में स्नान करके मेरा दर्शन करते हैं वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस भव सागर से उद्धार हो सकते हैं, वो मेरे धाम को वापस आ सकते हैं। ऐसे करके उसी समय नारद मुनि को जब भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, फिर बाद में जगन्नाथ अभी लवण सागर बंगाल के दक्षिण तट पर वो निवास करते हैं जगन्नाथपुरी में। जिस जगह में वो रहते हैं वो एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नीलगिरी, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन कहते हैं नीलगिरी, नीलाचल, जगन्नाथ जी का नीलाचल निवासी कहते हैं। निवासी मतलब वास करने वाले, नीलाचल मतलब अचल, मतलब जो हिलता डुलता नहीं है, नील मतलब ब्लू, ब्लू कलर का न हिलने वाला पहाड़, है कि नहीं। नीलाचल, शेषाचल, भद्राचल, ये सब पर्वतों का नाम है। शेषाचल में कौन है नहीं मालूम, तिरुपति बालाजी, भगवान श्रीनिवास, शेषाद्रि शेखर वो कल सुप्रभात। वैसे नीलाचल में जगन्नाथ जी हैं, नीलाचल में रहते हैं। जगन्नाथ जी का लीलाएं कृष्ण की जैसे मधुर हैं। भले ही जगन्नाथ इस प्रकार के फॉर्म में रहते हैं फिर भी उन्होंने जो लीलाएं वहां पे जगन्नाथपुरी में करते हैं और जगह कृष्ण के स्वरूप में वो अत्यंत मधुर है। यहाँ पे भी अपने इस्कॉन में राजापुर के जो जगन्नाथ है वहां पे भी, इन सारे जगहों पे जगन्नाथ बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। लीलाओं को श्रवण करने से अत्यंत उनके प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ता है। कृष्ण की लीलाओं की तरह श्री जगन्नाथ जी की भी लीलाएं हैं। हर एक मंदिर में जो भी विग्रह होते हैं उन विग्रहों का अध्यावधि लीलाएं चलता रहता है ना। ऐसा नहीं कि द्वापर में कृष्ण आए और कुछ लीलाओं को किए और चले गए, या त्रेता में भगवान राम आए कुछ लीलाओं को किए फिर चले गए, ऐसा नहीं है। श्री भगवान हमेशा लीलाओं को करते हैं। श्री विग्रह के रूप में भी जब भी रहते हैं तब पर भी वो लीलाएं करते हैं। भगवान के बहुत सारे अवतारों के अंदर एक अर्च अवतार भी होता है, अर्च अवतार, अर्च विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं भगवान। तो अलग अलग अवतारों में लीलाएं करते हैं तो अर्च अवतार में क्यों नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। अर्च अवतार में भी लीलाएं करते हैं, इसीलिए अब जितने मंदिरों में जाएंगे तो वहां पे लोकल हिस्ट्री होता है वहां का, है ना। वहां के स्थानीय भक्तों के साथ वहां का जो श्री विग्रह है जो भगवान है बहुत सारे लीलाएं किए हुए रहते हैं, है ना। अभी भी लीलाएं भगवान करते हैं मगर लीलाओं करने के लिए उस प्रकार का भक्त होना चाहिए, है तो उस प्रकार के भक्त जब भी भगवान के अंतरंग पार्षद उनको मिल जाते हैं तो भगवान उनके साथ लीलाएं करते रहते हैं। और इन्हीं सारे लीलाएं, ये सारे उत्सव भगवान क्यों करते हैं, हम जैसे पति जीवात्मा इसका मौका, इसका फायदा उठाकर उस उत्सव का मनाएं, उन उस दिन उनका नामों का जप करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें, जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार से ऊपर उठ सकते हैं या इस दुख से, ये श्राप से ऊपर उठ सकते हैं, उसको कहते हैं उत्सव। तो ये भगवान जी का उत्सव करने का पीछे उद्देश्य, क्यों उत्सव करते हैं हम सारे पति जीवात्माओं के लिए, ताकि हम उनके इन दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करके इस उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ा सकते हैं, हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम को प्रकट करा सकते हैं, और जिसके द्वारा धीरे धीरे से उनके प्रति प्रेम करते हुए हम इस भौतिक संसार को छोड़ के उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्देश्य है भगवान का कि इतना मधुर मधुर लीलाओं को करने के पीछे, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए बद्ध जीवात्माओं को ऐसे लीलाओं का श्रवण करा के या उनको अपने और खींचने के लिए, ऐसे लीलाओं को करते हैं जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण। ठीक वैसे ही भगवान जगन्नाथ पुरी में भी अनेकों लीलाओं को करते हैं। आप सबको पता होगा मालव राज्य करके एक राज्य हुआ करता था जिसको अवंती कहते हैं। वहां पे एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न। ये बात असलियत में ब्रह्मा जी के इस दिन का या पहला मनु स्वयंभू मनु के समय की घटना है ना। 14 मनु के बारे में आप हम लोगों ने कई दिनों से सुन रहे थे भागवतम क्लास में। तो उस अभी जो मनु चल रहे हैं वो सातवां मनु है कि नहीं, उनका नाम क्या है? वैवस्वत है ना, विवस्व का लड़का वैवस्वत मनु। सबसे पहला मनु हुए थे स्वयंभू मनु। इस स्वयंभू मनु के समय की एक घटना है। उस समय मालव के राजा थे इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त थे। वो एक राज ऋषि थे, अपने राज्य का पालन पोषण करने के साथ साथ भी भगवान कृष्ण के भगवान विष्णु के चरण कमलों में उनका भक्ति एकदम प्रगाढ़ था। वो भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की भक्ति करते करते एक बार उन्होंने अपने राज्यसभा में उपस्थित पंडितों को उन्होंने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मणों, मैं इसी जीवन में भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, इसी जीवन में भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। सभी लोगों ने सोच में पड़ गए क्योंकि भगवान का दर्शन तो दिव्य दृष्टि होना चाहिए है कि नहीं, साधारण व्यक्ति कर नहीं सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप का कैसे यह संभव है? उस बीच उनके राजसभा में एक दाढ़ी वाले बाबा बैठे हुए थे, वहां प्रकट हुए एक संत। वो संत परिभ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। और संत आके उन्होंने बताया कि महाराज, मैंने एक जगह देखा है जहां पे स्वयं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप पीतांबर पहने हुए, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि, कानों में मकराकृति कुंडल, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में सुशोभित वो निवास करते हैं। मैं स्वयं वहां पर जाके इस भगवान का दर्शन किया हूं सच्चिदानंद स्वरूप का। वहां पे प्रतिदिन देवताएं स्वर्ग से आते हैं वहां पर उनकी उपासना करने के लिए, स्वर्ग के अनंत अलग अलग प्रकार के सुंदर पुष्पों को फूलों को लेकर। मरते लोग के लोग भी उनको सेवा पूजा करते हैं। उस जगह का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र क्योंकि वहां पे पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। और उस पर्वत का नाम है नीलगिरी या नील पर्वत। उस नील पर्वत के अंदर एक गुफा में, जिसको नील कंदर कहा जाता है, उस गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु निवास करते हैं, जहां पर उनका नाम है नील माधव। उस नील माधव के नजदीक में एक कुंड भी है, जिस कुंड में स्नान करने मात्र से, जिस कुंड में स्नान करके भगवान नील माधव का दर्शन करने से उसी क्षण इस भवसागर से व्यक्ति उद्धार हो जाता है। वहां पे कल्प वट भी है, एक वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर व्यक्ति जो कुछ भी इच्छा करता है वो पूरा हो जाता है। इस प्रकार से वो ब्राह्मण एक्सप्लेन किए राजा को। तो राजा सुन के एकदम से प्रसन्न हो रहे थे, मेरा जो इच्छा है कि भगवान का दर्शन करना वो निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। इतना बताने के बाद उसी सभा में से वो जो ब्राह्मण है वो ओझल हो गए। तो राजा ढूंढने लगे कहां गए करके। फिर बाद में उनके सभी ब्राह्मणों को वो आदेश देते हैं कि वो जगह का ढूंढ निकालो कहां पे है वो जगह। तो ब्राह्मण उनका जो कुल गुरु थे, हर एक राजा का एक एक कुल गुरु होते हैं लेकिन राजा को शासन कार्य में सही सलाह देने के लिए एक ब्राह्मण होना चाहिए जो विद्वान अभी भी होते हैं मालूम है, जो एक मंत्री होते हैं ना वो वैसे ही कई सारे हैं बिना पढ़े लिखे हो जाते हैं, और अभी क्या होता है एक एक आईएएस ऑफिसर उन लोगों की असिस्टेंट बने हुए रहते हैं जो उनका हेल्प करते हैं। हाँ, पिछले साल उससे पहले सर हम कई लोगों को इधर अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए प्रयास किया, मैं इंटरनेट में उनका बायोडाटा पढ़ रहा था, वो मेट्रिकुलेशन भी फेल है और अभी मंत्री एमएलए एमपी होकर बैठे हुए, ऐसे ऐसे लोग अभी राजा बन जाते। तो एक आईएएस ऑफिसर उनके अंडर काम करना पड़ता है, और मैंने कलेक्टर से भी मिलने गया था यहाँ पे वलसाड़ वाला, तो उससे पर्सनल मिला बुलाया बहुत देर बाद, कुछ 15-20 मिनट हमसे बात किया कलेक्टर ने अकेले, तो बोल रहा था क्या करें हम आईएएस हैं फिर भी यह बिना अनपढ़ मंत्री लोग आते हैं तो हमको उनके पीछे भागना पड़ता है महाराज। कलेक्टर खुद बोल रहे थे ऐसा। तो हर एक राजा के पास एक एक कुलगुरु होना चाहिए, पंडित व्यक्ति होना चाहिए जो राजा का निर्देश दे सके। उस समय राजाएं ऐसे नहीं हुआ करते, वो लोग भी बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे राजा लोग, फिर भी उनके वो एक गुरु रखते थे जो धर्म के बारे में नीति के बारे में वो उनको शिक्षा दे सके। तो कुलगुरु उनको बताए कि मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है विद्यापति, वो भ्रमण करने में तेज है, उसको भेजते हैं, वो ढूंढ निकालेगा निश्चित रूप से। तो सभी लोग विचार करके विद्यापति को भेजे, तो विद्यापति ये उड़ीसा के लिए निकला। उड़ीसा का अभी नाम उड़ीसा है, इससे पहले उड़ीसा भी कहते थे, ओरिसा ओ आर आई एस एस ए करके लिखते थे, अभी उसको चेंज करके उड़ीसा कर किया गया, और उससे पहले उड़ीसा का नाम था उत्कल, उससे पहले उत्कल का नाम था उड्र देश, कलिंग कुछ दिन था और कलिंग उत्कल, और उससे पहले उड्र देश करके था, उड्र देश स्कंद पुराण में उड्र देश करके बताया गया उड़ीसा का नाम। तो वहां पहुंचे ढूंढते ये विद्यापति, जब गए वहां पर वो नीलगिरी पर्वत के नजदीक पहुंचे, ये ब्राह्मण थे और विद्यापति स्वाभाविक भगवान विष्णु के भक्त थे, उस समय से भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे सत्ययुग में, ऐसा नहीं कि और इधर उधर देवी देवताओं के बाबाओं की पूजा करते थे, नहीं, तो केवल उनको मालूम था सुप्रीम भगवान विष्णु है। और देवता लोग तो उस समय की मनुष्य देवताओं में अंतर नहीं रखते थे, वो कभी भी जाते थे स्वर्ग में राजा लोग, और कभी भी वो देवता लोग भी इधर आते थे। अब देखेंगे इंद्रदुम्न राजा को रथ बनाने का है जगन्नाथ जी के लिए, तो बोले कि जाओ उसको बुला के लेके आओ, तो किसको, वो विश्वकर्मा को तो रथ बनाएगा जगन्नाथ जी, तो उनके मंत्री जाकर उनको लेके आते थे विश्वकर्मा को, चलो रथ बना, तो उनको फर्क नहीं मिलता था देवताओं उसमें, इसलिए उनको मालूम हुआ था सुप्रीम लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु है और कोई नहीं, इस प्रकार से उनको मालूम रहता था। तो विद्यापति भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचे वो बहुत प्रसन्न हो गए, उनके अंदर एक अजीब सा आनंद पैदा हुआ, किसके अंदर, विद्यापति के अंदर, कि मैं जिस स्थान में पहुंचा ये निश्चित रूप से ये भगवान का निवास स्थान है, यहाँ के हर एक व्यक्ति वैकुंठ के निवासी है, वो चतुर्भुज स्वरूप है, ये आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लोग जब भी धाम में जाते हैं हम धाम में क्या देखते हैं, ऐसे ही कंक्रीट का बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, वहां के रिक्शा वालों के साथ झगड़ा करते हैं, है कि नहीं, दुकान वालों के साथ तोल मोल करते हैं, यही सारा चीजें हम धाम में भी जाके करते हैं अभी भी, मगर धाम का महिमा हम अगर पढ़ेंगे, वहां में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति भगवान का पार्षद होते हैं। जगन्नाथपुरी के बारे में उनकी धाम महिमा में बताया गया स्कंद पुराण में, वहां पे निवास करने वाला हर एक व्यक्ति चतुर्भुज होते हैं, हर एक व्यक्ति, इवन कोई व्यक्ति वहां प्रवेश करता है तो जगन्नाथपुरी का एंट्रेंस है एक जगह, उसको अटल नौरा कहते हैं, अटल नौरा तो कुछ नहीं, वो एक ब्रिज है छोटा सा वो पानी जाने के लिए, वो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने का मेन एंट्रेंस है, जगन्नाथपुरी के अंदर जाने के, मंदिर के नहीं, पुरी के अंदर, सिटी के अंदर,
तो अठरनाला में, अठरनाला को पार करके कोई व्यक्ति एंट्री किया अंदर, तो उस व्यक्ति का भी चतुर्भुज बन जाता है, वो व्यक्ति खुद ये धाम है। बिकॉज जगन्नाथपुरी भू वैकुंठ है, पृथ्वी के लिए वो वैकुंठ जगत है। आप देखेंगे भगवान रामचंद्र का जो अयोध्या है ना, एक वैकुंठ जगत में भी अयोध्या है। जब भगवान राम को आना था तो अयोध्यापुरी पहले यहां आया था, फिर राम आए। अभी वृंदावन देखेंगे तो वहां पे भी वैकुंठ जगत में भी एक वृंदावन है जो हमेशा रहता है, अयोध्या भी हमेशा रहता है, द्वारका भी हमेशा वहां पे है, मथुरा भी हमेशा वहां रहता है। जब भगवान यहाँ लीला करने आते हैं तो धाम भी नीचे आता है, मगर जगन्नाथपुरी वहां नहीं है। भगवान का अलग अलग अवतारों का अलग अलग जगह है, वहां पर प्लेनेट है वैकुंठ में, जगन्नाथपुरी के लिए अलग प्लेनेट नहीं है। जगन्नाथ जी का विग्रह या जगन्नाथ जी के स्वरूप में भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, वो केवल यहीं पर रहते हैं, पुरी में रहते हैं। इसीलिए ये भू वैकुंठ, इसीलिए ये भू वैकुंठ है, ये वाला स्वरूप वैकुंठ में प्राप्त नहीं होंगे, ये केवल यहीं पर प्राप्त होंगे, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप। तो विशेष रूप से अपने लिए कलयुग के लोगों के लिए वहां पे नहीं है जगन्नाथ जी का। तो वहां विद्यापति प्रवेश करते ही देखा हरेक व्यक्ति दिव्य है, चिन्मय जगत है। वहां पे कुछ लोग जो है कथा कर रहे थे, विद्यापति ब्राह्मण जाके बैठ के कथा सुनने लगा। संध्या समय हो गया, होने के बाद उस गांव का, वो गांव जो ना जंगल का गांव था, जंगल में रहते ना जंगली लोग, क्या कहते हैं सवर, सवर हिंदी में सवर कहते हैं, आदिवासी लोग, वो आदिवासी गांव था। वो गांव में भी प्रवचन चल रहा था, है कि नहीं? बिल्कुल टीवी नहीं था उस समय, टीवी नहीं था, प्रवचन प्रवचन बैठ के सुने, खुश हुए। गांव के हर एक गांव में एक एक मुखिया होते हैं गांव के, है ना, वो गांव का भी एक मुखिया थे, उनका नाम था विश्वावसु। मुखिया का नाम क्या था? विश्वावसु। ये विश्वावसु मुखिया इनको पूछे, ये ब्राह्मण को पहचान गए, ये हमारे गांव के नहीं है, है कि नहीं? अभी वापसी में कोई आता तो हम नहीं पहचान पाएंगे। हमारे घर के सामने बाजू वाला बिल्डिंग में, बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है अपने को मालूम नहीं रहता, मगर आप गांव में जाएंगे ना, आपको एक बच्चा भी देख के बोल देगा कि कौन से गांव से आए हो, तुरंत पूछेगा। गांव में एक बच्चा भी गांव के सभी लोगों को जानता रहेगा। अब गांव का किसी का एड्रेस पूछना है, कितना भी बड़ा गांव हो, एक बच्चे को जाकर पूछिए फलाना व्यक्ति किधर रहता है, आपका हाथ लेकर उसके घर में छोड़ के आएगा। मगर यहाँ उसके सामने वाला फ्लैट वाले के बारे में सामने वाले फ्लैट को पूछेंगे ना, नहीं मालूम रहता। मालूम रहता आप लोग फ्लैट में रहते हैं ना, बॉम्बे में आके मुझे पता लगा, मुझे अजीब लगा और कैसा रहते हैं लोग। गांव में हर एक व्यक्ति जाओ तो तुरंत पूछे कि आप कहां से आए, और थके हुए लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लंबा सफर तय किए थे, और किस उद्देश्य से आप भ्रमण कर रहे हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनको तुरंत तो पैर धोने, पैर धोए और उनका सेवा किए। अतिथि का अर्थ यह नहीं है कि वो आपको पहले बताएंगे कि हम आएंगे फलाना दिन। अतिथि का अर्थ यह कि कभी भी आएंगे, और मतलब नहीं, तिथि मतलब समय या डेट, अतिथि मतलब उसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है, कभी भी आके पहुंचेंगे। अगर अभी ऐसा कोई पहुंचेगा तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना, उनको ठीक से रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, पूरा समाज ऐसे बन चुका है। और गलती से कोई बुलाया हुआ भी जाएगा तो दो तीन दरवाजे रहेंगे, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो लेंस में देखेगा कैसा दिखता है आदमी, फिर बाद में छोटा सा विंडो रहेगा, बॉम्बे में रहता है ग्रिल, उसको खोल के पूछेगा क्या है। अगर बच्चा कह रहेगा तो क्या चाहिए, ना बुलाना व्यक्ति से, हाँ पिताजी से मिलना है, ठीक है मैं बोलता हूँ। पिताजी से मिलना है करके ना तो दरवाजा खोलेगा, ना नमस्कार करेगा, ना कुछ नहीं, वो पहले जाके पिताजी को बोलेगा, है कि नहीं? पिताजी आके वो भी देखेगा, अगर पहचानता है तो दरवाजा खोल के अंदर लाएगा। वो व्यक्ति अंदर आने के बाद भी वो पत्नी अपने काम में, बच्चा अपने काम में, उनके सामने हम भी जाते रहेंगे, कोई बुजुर्ग है उनको रेस्पेक्ट देंगे, उनको अच्छा पूजा पूछेंगे, कुछ नहीं, वो रेस्पेक्ट। मगर ऐसा नहीं, एक बार एक गाँव में ऐसा हुआ था,
हमको मैं कॉलेज से आया और मेरे भाई लोग गांव से स्कूल इत्यादि गए थे, वो लोग सब आए। घर में एक लेडीज बैठी थी हमारे घर में, वो एकदम से जीर्ण शीर्ण लग रही थी, ऐसे गंदा कपड़ा पहनी हुई थी, गांव से आई थी कोई, गांव से, और वो बैठी हुई थी, मेरी मम्मी से बात कर रही थी और हम आए। तो कभी कभी कुछ ऐसे भिखारी लोग भी आते थे हमारे घर में बैठ के गप्पे बांटते थे मम्मी से, वो पहला एक्सपीरियंस था हमारा। तो हम आए, हम अपना बेडिंग रखे, बुक्स वगैरह रखे, अपना खा पी के फिर निकल गए अपने अपने जगह। तो औरत तुरंत पूछी मेरे मम्मी को, तेरे लड़के पढ़े लिखे बोल रही हो ना, कोई नमस्कार भी नहीं करता है। तो बहुत लगा था, वो औरत जाने के बाद मेरे मम्मी हम लोग बहुत डांटे थे। सभी लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं। हमने सोचा था कोई होगा, मगर कोई रिश्तेदार था। तो तुरंत विश्वावसु ने वो विद्यापति ब्राह्मण का सत्कार किया, घर में लिया, उनका देखभाल किया, फिर उनको पूछा, सबसे पहले आप कैसे हैं, आप कहां से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, अब मैं और क्या सेवा करूं आपका। विद्यापति बोलने लगे, मैं ब्राह्मण विद्यापति हूं, इंद्रदम्न राजा का भेजा हुआ दूत हूं, राजा का इच्छा है कि भगवान का दर्शन करना, एक संत महात्मा ने बताया थे कि यहां पे भगवान निवास करते हैं इस पर्वत के ऊपर, उनका स्थान निरूपण करके राजा तक खबर पहुंचाने के लिए मैं यहां पे आया। ये बात सुनते ही वो विश्वावसु, वो जो सवर जाति का हेड था, उसका बहुत दुख हुआ, उसने इधर उधर घुमाने लगा, ओ वहां कैसे, अच्छा ठीक है वहां कैसे जाएंगे, बहुत घना जंगल है, रास्ता संकीर्ण है, बहुत डेंजरस डेंजरस एनिमल्स रहते हैं वगैरह वगैरह। विद्यापति बोले कि यही मेरा ड्यूटी है, राजा का तो इसके बारे में बताना ही है, मगर उससे पहले मुझे उनका दर्शन करना है। और विश्वावसु तुरंत याद किए, क्योंकि अभी तक भगवान निर्माधव है, जो चतुर्भुज के फॉर्म में रहते हैं, वो पर्वत के शिखर पर, वो केवल दो लोगों से पूजा पाते थे, एक ये देवता लोग वहां पे आते थे उनकी पूजा करने के लिए स्वर्ग के, और दूसरा इस संसार में से केवल ये विश्वावसु जो सवरों का राजा या मुखिया वही पूजा करता था, दूसरा किसी को नहीं मालूम था। सब लोग जानते थे कि वहां भगवान रहते थे, मगर रास्ता किसी को नहीं मालूम, ये विश्वावसु को मालूम है, वो अकेला जाया करता था, वो पूजा करके वापस आता। सबको मालूम है कि ये भगवान, ये सवर भगवान विष्णु का एक महान भक्त है, भगवान विष्णु स्वयं उनका पूजा को स्वीकार करते हैं। तो वहां भगवान नीलमाधव ये विश्वावसु का पूजा स्वीकार किया करते थे। तो विश्वावसु याद किया, जब भगवान नीलमाधव उनकी सेवा स्वीकार करने आए थे, उस समय आकाशवाणी भी हुआ था कि हे विश्वावसु, ब्रह्मा जी के 50 दिन तक मैं रहूंगा इसी रूप में, और तुम्हारे समय पे ही इंद्रदम्न राजा का एक ब्राह्मण आएगा मुझे देखने के लिए, वो मुझे देखेगा और मेरा खबर लेके अपने राजा को देगा, राजा इंद्रदम्न इस खबर को पाकर और मुझे दर्शन करने के लिए यहां आएंगे, मगर तब तक मैं नहीं रहूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा, राजा यहां आते आते मैं चला जाऊंगा, राजा बहुत दुखी होंगे, मगर बाद में राजा यहां पे मेरे लिए यज्ञ करेंगे, इसी पर्वत के ऊपर मेरे लिए बहुत बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, उसके बाद मैं फिर से प्रकट होऊंगा, मगर इस रूप में नहीं, दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। कौन से रूप में?
दारू ब्रह्म
के रूप में प्रकट होऊंगा मैं, और वो राजा इंद्रदम्न दारू ब्रह्म के रूप में मेरा पूजा करेगा और आपके हाथ से मैं निकल जाऊंगा। इस प्रकार से पहले भगवान ने ये विश्वावसु सवर को बता चुके थे, इस बात को याद किया विश्वावसु ने, वो सवर राजा ने, और बहुत दुखी हुआ कि अब समय आ गया कि भगवान मेरे से चले जाएंगे और मेरा सेवाओं का जो समय है वो पूरा हो गया है। अभी अंदर ही अंदर रोने लगा हो, मगर ये तो भगवान का ही इच्छा है, विश्वावसु का बहुत, वो विद्यापति का बहुत सेवा किया, उनको बोला कि ठीक है आप विश्राम करिए, हम दूसरे दिन भगवान जी का दर्शन करने के लिए ऊपर चलेंगे। फिर वो दूसरे दिन विद्यापति को लेकर वहां पे जाते हैं। ये कथा दो प्रकार से सुनने के लिए मिलता है। मैंने जो बताया ये शास्त्रानुमोदित है, और एक प्रकार की ये घटना को ऐसे बताते हैं, उड़ीसा में प्रचलित है लोक कथा में, लोग इसको कहते हैं कि विद्यापति जैसे वहां गया तो विश्वावसु मना किया, नहीं लेके जाऊंगा मैं, है कि नहीं। तो विद्यापति कुछ दिन वहां रुका। विश्वावसु का एक कन्या थी, उसका नाम था ललिता, उसका लड़की। विद्यापति का संबंध ललिता से बढ़ने लगा और ललिता जिद कर बैठी कि विद्यापति से विवाह करेगी। विश्वावसु अपने एकमात्र कन्या ललिता का बातों को न काटते हुए, और लड़का भी उच्च कुल का था, ब्राह्मण, इसलिए उन्होंने ललिता का विवाह करा दिए। किसके साथ? विद्यापति के साथ। कुछ दिन वहां बीतने के बाद ये विद्यापति ललिता के द्वारा अपने पिताजी को कन्विंस किए कि तुम्हारे पिताजी को बोलो कि मुझे भगवान के पास ले जाएंगे। तो पिताजी राजी हुए थे, मगर एक शर्त रखे थे, मैं ले जाऊंगा मगर आंख में पट्टी बांध के ले जाऊंगा। फिर ललिता चालाकी करके वो विद्यापति के हाथ में सरसों का एक पोटली दी थी और उसमें छोटा सा छेद कर दी थी। और ससुर ने ये विद्यापति को लेके विश्वावसु भगवान के पास गया वो घने जंगल के रास्ते में, तो सरसों की पोटली में से एक थोड़ा थोड़ा सा सरसों गिरते 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 मंदिर तक गया था, और वहां दर्शन हुआ, उन्हें लेके आ गए थे। दूसरे दिन वो सरसों का पौधे तुरंत उग जाते, मालूम है ना, रात को डालेंगे तो सुबह उग जाएंगे बारिश होगा तो सरसों के पौधे उग गए थे। तो विद्यापति उस मार्ग से फिर उस रास्ते पर गए थे। ऐसा करके एक कथा और भी मिलता है मतांतर। जो भी हो, कैसे भी करके विद्यापति भगवान का दर्शन किए। सबसे पहले रोहिणी कुंड, वहां पे एक कुंड है, वो कुंड का नाम है रोहिणी कुंड। उस कुंड में स्नान किए। विद्यापति ने उस कुंड में स्नान करते समय देखे एक कौवा उसको वहां पे बैठा हुआ था कल्प वृक्ष में। वो आया उस रोहिणी कुंड में डुबकी लगाया, डुबकी लगा के बाहर निकला तो कौवा का शरीर नहीं था, चार भुजा वाला एक व्यक्ति बन के ऊपर चला गया। ये विद्यापति आश्चर्य हो गए कि जो भी व्यक्ति रोहिणी कुंड में स्नान करता है वो जीवात्मा तुरंत ही उसका मुक्ति प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ के वासी जैसा चतुर्भुज बन जाता है। विद्यापति बोले कि अभी मुझे रोहिणी कुंड में स्नान करके मुक्ति मिल जाएगा तो राजा को कौन बताएगा ये खबर, है कि नहीं, बाद में करूंगा। तो फिर उन्होंने रोहिणी कुंड का दर्शन किया, कल्प वृक्ष का दर्शन किया, फिर भगवान जी का दर्शन करने गए। वहां पे एक अद्भुत चीज यह था, भगवान जी का जैसे ही दर्शन किए उस जगह एक अद्भुत सुगंध से सुगंधित था। वो सुगंध केवल उसी जगह में था, संसार में और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के गले में जो हार था वहां पर, वो हार या वो फूल देव लोग से देवता लोग लेके आए थे, देवता लोगों के द्वारा पहनाया हुआ फूल का हार था, इसलिए उस जगह पर बहुत सुंदर सुगंध फैला हुआ था। और विद्यापति ने भगवान नील माधव का वहां दर्शन किए, बहुत सारे प्रार्थनाएं किए, फिर ये विश्वावसु के साथ वो वापस आए। वापस आके वो चले गए किसके लिए, राजा इंद्रदम को बताने के लिए। एक हार लेके गए थे वो यहाँ से, भगवान जी का एक हार, वो जो देवताओं के द्वारा बनाया हुआ, वो हार को लेके राजा के लिए गए। जैसे विद्यापति उस जगह से निकल गए या वो क्षेत्र से आगे चले गए, तुरंत ही बहुत जोर से वहां पे तूफान आया, और तूफान इतना तेजी से बहने लगा समुद्र का रेती उड़ने लगा चारों तरफ। समुद्र के किनारे था वो पर्वत, ब्लू कलर का पर्वत था, समुद्र से रेती चारों तरफ उड़ने लगा और इतना तेज तूफान था, ये रेती उड़ते 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 संपूर्ण पर्वत को ढकने के लिए प्रयास किया, ढकने लगा पर्वत। भगवान नीलमाधव ओझल हो गए। उनका समय था संध्या समय, गौर आरती का समय था, देवता लोग आते संध्या आरती कर रहे थे भगवान का, उसी समय ये तूफान हुआ था, और उसी देवताओं के सामने ही भगवान गायब हो गए। सब देवता लोग रोने लगे भगवान के विरह में, प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान बताए कि अभी मेरा समय हो गया है, फिर फिर मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा इंद्रदुम्न राजा के समय में। ठीक उसी समय जब भगवान ने गायब हुए ना, उसी समय ब्रह्मा जी का भी 50 साल पूरा हो गया, 51वां साल प्रारंभ हो चुका था। इसलिए भगवान नील माधव अप्रकट हो गए। यहाँ पे विद्यापति जाते हैं और वहां मालव में राजा इंद्रदुम्न को सब कुछ बताए। राजा बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान का हाथ को भी स्वीकार किए। राजा तुरंत अनाउंस किए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब लोग निकलेंगे नीलांचल के लिए। अभी राजा का ऑर्डर है, जबरदस्ती नहीं, सब लोग प्रसन्नता के साथ स्वइच्छा से भगवान का दर्शन करने के लिए राजा के साथ मंत्री और सेनाओं के साथ साथ सारे प्रजा भी, कई सारे प्रजा भी राजा के पीछे पीछे वो निकल आए जगन्नाथ जी का, तो नील माधव का दर्शन करने के लिए। अनेकों दूर चलते 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 आ रहे थे, रास्ते में कुछ अपशकुन दिखाई पड़ रहा था। कई सारे अपशकुन होते हैं मालूम है, हाँ, आवल दिखाई पड़ना, उल्लू उल्लू दिखाई पड़ना, बिल्ली दिखाई पड़ना, कुछ ना कुछ है ना, आंख फड़कना, और कई सारे होते हैं, कुरूप स्त्रियां दिखाई पड़ना, ऐसे रोती हुई गाय दिखाई पड़ना, ये सारे अपशकुन होते हैं। तो कई सारे अपशकुन राजा को दिख रहा था, तो राजा बोल रहे थे कि ओहो ये सारे अपशकुन क्यों दिख रहे हैं। अपशकुन दिखने के पीछे भी रीजन होता है, कभी कभी मॉडर्न एज में इस चीजों को कोई कोई मानते नहीं, बोलते कि अंधविश्वास है, नहीं उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन होता है ना, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है हमारा है, और साथ साथ में है वो वैदिक स्क्रिप्चर में भी उसके बारे में वर्णन किया गया है। आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे, हाँ, जब भी भगवान श्री कृष्ण चले गए थे उस समय युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत सारे अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे, और जब भी अर्जुन वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे थे अर्जुन को, और कई जगहों पर ऐसे अपशकुन दिखाई पड़ते थे। गांव के घटना था, रात्रि के समय सज धजना नहीं चाहिए, तो हम बचपन में थे, एक एक घर एक फैमिली वो कहीं जाना था, उनको गाड़ी भाड़ा किए थे सब वो लोग, वो स्त्रियां रात को सज के एकदम गाड़ी में निकले, जैसे ही गाड़ी से निकले सबसे पहले दिल्ली क्रॉस किया, उसको मायने नहीं रखते वो लोग, आगे निकले, और वो जो उल्लू होता है ना वो आके उनके गाड़ी के ऊपर बैठ गया, चलता हुआ गाड़ी के ऊपर, उसको भी उन लोगों ने मायने नहीं रखा, आगे गया, और ऐसे कुछ दो तीन चीजें ना, और आगे जाके उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें से कुछ तीन चार लोग मर गए, जो स्त्री एकदम से सजदस के गई थी वो भी शायद मर गई, कोई एक दो तीन व्यक्ति बचे, उसमें से जो बचा था वो आके बताया कि ऐसे ऐसे सब हुआ था, फिर भी हम गए थे तो ये हुआ, ऐसे बता रहे, तो इनका कुछ होता है रीजन। अब सबको दिखाई पड़े तो नारद मुनि इंद्रदुम्न महाराज के साथ थे, तो उन्होंने उनको समझाते समझाते लेके गए। उड़ीसा में एक नदी है बड़ा सा, नदी का नाम है महानदी, महानदी के किनारे पहुंचे, सब लोगों ने वहां स्नान किए, तब तक उड़ीसा का राजा किंग ऑफ उड़ीसा वो वहां आके पहुंचे, तो इंद्रदुम्न राजा के साथ उनका वार्तालाप हुआ, उन्होंने पूछा कि कैसे आपके राज्य में सब ठीक चल रहा है, तो उड़ीसा का राजा रोते हुए बोले कि नहीं, हमारे जगन जो नील माधव है भगवान मेरे राज्य में रहते थे वो अभी अदृश्य हो गए, हमारे राज्य के सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे। ये सुन के राजा इंद्रदुम्न बेहोश हो गए, कितने दूर से उनका दर्शन करने के लिए आए थे सभी राज्यवासियों को लेके, और अभी यहाँ आके उनको पता लगा कि भगवान अदृश्य हो गए, तो बेहोश हो गए वहां पर। नारद मुनि सभी लोगों ने उनको उठाए, उनको समझाए, नारद मुनि तो सभी चीजें जानते हैं और उनको बता चिंता मत करो, पहले चलो वहां पे देखते हैं क्या है, वो पर्वत के ऊपर गए, नील पर्वत के ऊपर। नारद मुनि बताए कि आप अश्वमेध यज्ञ करो, यज्ञों को पूर्ण करते करते भगवान स्वयं फिर से आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए आएंगे। उनका बात सुने कहां यज्ञ करेंगे, तो वहां पे एक भगवान नरसिम्हा देव का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, गुंडीचा मंदिर के बाद में आप कौन कौन गए जगन्नाथपुरी वहां पे देखे, गुंडीचा मंदिर के थोड़ा आगे एक मंदिर है, उसको आदि नरसिंह कहते हैं।
वो नरसिंह भगवान जगन्नाथ जी से भी पहले से वहां पे है,
वो दोनों चेहरा है उनका, उग्र नरसिंह और शांत नरसिंह है ना। पीछे साइड उग्र नरसिंह है, आगे की साइड शांत नरसिंह है। अब पुजारी को अगर कन्विंस करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देंगे तो आपको पीछे लेके दिखाएंगे उनका चेहरे को। ये नरसिंह देव का भगवान का विग्रह जगन्नाथ जी के मंदिर से भी पहले सत्ययुग में है ना, स्वयंभू मनु के समय का है वो विग्रह वहां पे था। तो नारद मुनि बोले कि दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर सैक्रिफाइस, ये यज्ञ के लिए सही जगह है, यहाँ पे आपको यज्ञ करना चाहिए। तो राजा वहां पे यज्ञ करना प्रारंभ किए। वो जो गुंडीचा मंदिर है ना, उस जगह में राजा रहने लगे थे। गुंडीचा ये इंद्रदुम्न राजा की पत्नी का नाम है, राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम है गुंडीचा। तो वहां पे वो यज्ञ प्रारंभ किए। तो इंद्रदुम्न सरोवर जो है पीछे मंदिर से और आगे जाएंगे, यज्ञ के लिए राजा ने वहां पे बहुत सारे गाय इकट्ठा किए थे दान देने के। वो गाय वहां पे रहते रहे, इतने सारे गाय रखे थे कि गाय रहते रहते वहां पे गड्ढा हो गया था, वो गड्ढा तालाब बन गया, इंद्रदुम्न सरोवर ऐसा बना हुआ। तो अश्वमेध यज्ञ किए राजा ने, अश्वमेध यज्ञ पूरा होते होते राजा को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और दर्शन देके बोले कि मैं दारू के रूप में अर्थात लकड़ी के रूप में समुद्र में आऊंगा, मुझे लेके आना। और एक बूढ़ा व्यक्ति आएगा आपके सामने दिखाई पड़ेगा सब लेके अपना हथियार, उसको एक कमरे के अंदर अकेले छोड़ देना, वो मेरा विग्रह को बना के तुमको देगा और तुम उसका उपासना करना और उसके लिए एक बहुत बड़ा सा मंदिर भी बना देना। इस बात को नारद मुनि को बताएं। और तुरंत ही उड़ीसा के कुछ लोगों ने आके राजा को इन्फॉर्म किए कि बांकी मुहाण, मुहाण का अर्थ होता है उड़िया में मुहाण शब्द, उड़ीसा उड़िया शब्द है ये, नदी नदी और समुद्र जहां पे मिलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जहां पे समुद्र के साथ नदी, हाँ संगम, संगम स्थल है ना, नदी और समुद्र का संगम स्थल, उसको उड़िया में मुहाण कहते हैं। बांकी मुहाण एक ऐसी जगह है जहां पे एक नदी आपके समुद्र के साथ मिला हुआ है, वहां वहां पे कोई गया, चक्र तीर्थ कहते हैं उसको, चक्र तीर्थ गए। उस जगह में लोग आके बोले कि वहां पे एक लकड़ी तैर के आया है, उस लकड़ी का जो मूल है वो इधर दिखाई पड़ रहा है और उसका अग्रभाग कहां पे है पता नहीं लग रहा है, अंदर की ओर है, बहुत बड़ा सा लकड़ी है। तो सब लोग गए वहां पे दौड़ के देखे, वहां पे एक लकड़ी आया था, बहुत मेहनत करके एक ही लकड़ी था, वो लकड़ी को लेके, वो लकड़ी क्या था मालूम है, भगवान हम क्षीर सागर में निवास करने वाले शिरोदक्षाय विष्णु के एक रोम, शरीर का एक रोम होता है ना रोम, वो है, वो समुद्र में गिरा और वो लकड़ी के रूप में वहां तक पहुंचा। तो वो लेके आए, उसको लेके आए, तो बहुत सारे कारपेंटर्स प्रयास किए, कोई कुछ कर नहीं पाया, उसको खरोच भी नहीं ला पाया उसमें। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा तो सब लोग शंकित हुए कि यह सच में ये बूढ़ा व्यक्ति कर सकता है क्या। बोले कि फिर राजा को याद आया, नहीं मुझे भी सपने में भगवान बताया थी जो बूढ़ा व्यक्ति, उनको लेके 15 डेज एक कमरे में रख के बंद किए। कमरे के बाहर बहुत जोर जोर से कीर्तन हो रहा था ताकि वो आवाज बाहर ना आए। कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी का ये विग्रह बनाते समय का अगर आवाज सुनता है, आवाज किसी के कान तक पहुंचता है, तो हो सकता है वो बहरा हो जाए या अंधा हो जाए या कभी कभी उसका जान भी जा सकता है। इसीलिए अभी भी जब 12 साल में एक बार जगन्नाथ जी का विग्रह चेंज होता है जगन्नाथपुरी में, उसको नव कलेवर कहते हैं, उस समय चारों तरफ बंद रहेगा और चारों तरफ जो है जोर जोर से कीर्तन होगा, कंटिन्यूस बिना खाए बिना पिए वो कीर्तन करेंगे। अंदर के कारपेंटर्स भी 15-20 दिन तक वो खाएंगे नहीं, बिना खाए काम करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, कंटिन्यूस काम करेंगे। अभी भी अभी 2015 में है, 12 ईयर्स हो रहा है अभी 2015 में, नव कलेवर का उत्सव, नव मतलब नया, कलेवर मतलब शरीर, भगवान को नया शरीर प्राप्त होता है उस दिन ना। तो जगन्नाथ जी का विग्रह बना, तब तक जगन्नाथ जी का विग्रह बनते बनते उधर जगन्नाथ जी के लिए एक बड़ा सा मंदिर भी थोड़ा दूरी पे उन्होंने बनाया, इंद्रदुम्न ने, राजा इंद्रदुम्न। बनाने के बाद वो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए ऊपर गए, कहां पे, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में उस समय सक्षम होते थे वो लोग, मैं बोला था ना ये लोग मनुष्य लोग हैं फिर भी वो किधर भी पहुंच जाते थे जाके, इसलिए उन लोग को मालूम था कि विष्णु परम है तो पहुंच गए थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी बोले कि अरे आप इधर क्या कर रहे हैं ना, चलो चलो थोड़ा भगवान का इंस्टॉलेशन करना है। ब्रह्मा जी बोले पहले चलो नीचे, मैं आता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ का समय और तुम्हारे वहां का समय में बहुत अंतर है, अभी पता नहीं वहां क्या हुआ रहेगा। सच में पूरा मंदिर भी ढक गया था रेती में, पहाड़ी छोड़ो मंदिर भी रेती में ढक गया था। और वहां पे गल्ल माधव करके एक राजा वो घोड़े पे जा रहा था, उसकी घोड़े के पैर में मंदिर का शिखर लगा, तो राजा ने उसको खोद के देखा तो ये मंदिर है। उसने खोदा वहां पे गणेश जी को रखूंगा करके बोला। तो फिर इधर तुमने राजा पहुंच के बोले नहीं नहीं ये भगवान विष्णु का मंदिर है, हाँ यहाँ पे जगन्नाथ जी रहेंगे, ऑलरेडी जगन्नाथ जी है। तो दोनों के बीच में वो होता। फिर वहां पे काकभुसुंडी, काकभुसुंडी सुने हाँ, काकभुसुंडी वहां पहुंचते हैं, वो सॉल्व करते हैं, गल्ला माधव को समझाते हैं सुनो ये इंद्रदुम्न नहीं बनाया था पूरा, हाँ हाँ वो है काकभुसुंडी हमेशा रहता है ना, वो आके बताए वहां। तो फिर नारद मुनि भी आए थे, फिर गल्ला माधव को समझाए, फिर वो स्वीकार किए। तब तक ब्रह्मा जी आए अपना हेलीकॉप्टर लेकर। ब्रह्मा जी का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जगह नहीं था, उन्होंने कहा उतने मालूम है जगन्नाथपुरी के नजदीक एक पर्वत है उसका नाम है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा जी वहां पे उतरे इसलिए उसका नाम ब्रह्मगिरी पड़ा, उस पे अपना हेलीकॉप्टर का रखे स्वान है ना, स्वान है ना वहां रखे हो ब्रह्मगिरी वहां पे रखे हो। चल के आए तो जंगल था वो, रास्ता भटक गए ब्रह्मा जी। तो वहां पे एक देवी प्रकट हो गई, बोली कि देखो ब्रह्मा जी किधर जा रहे हो, ना भगवान के मंदिर में जाना ना इधर से जाओ, उसका नाम है बाटा मंगला। हाँ वो रास्ता दिखाई थी, बाटा मीन्स रास्ता, वो अभी भी जगन्नाथपुरी में वो हाईवे में पूरी जाएंगे ना उधर लेफ्ट साइड में आएगी बाटा मंगला, वो रास्ता उधर से ही, वो ब्रह्मगिरी से ब्रह्मा जी उधर से ही गए थे इसलिए उधर अभी रोड बना हुआ है। वो ब्रह्मा जी को बोलते कि ये रास्ते से जाना तब मंदिर मिलेगा। वो देवी अपने से प्रकट हुई थी वहां पे इसलिए देवी का नाम है बाटा मंगला, हाँ रास्ता दिखाई थी। और ब्रह्मा जी वहां आए और मंदिर के राइट साइड में एक मंडप है बड़ा सा, उसको मुक्ति मंडप कहते हैं, देखा आप लोगों ने मुक्ति मंडप। वो मंडप के ऊपर पहली बार ब्रह्मा जी बैठे फर्स्ट, उसके ऊपर बैठ के उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने से सबसे पहले यज्ञ में से प्रकट हुए नरसिम्हा देव। वो मुक्ति मंडप के ठीक सामने एक नरसिम्हा देव का विग्रह है, वो यज्ञ नरसिम्हा है, सबसे पहले प्रकट हुए थे। और उनके ऊपर पांच मुखी वाला अनंत शेष भी है। फिर इंद्रदुम्न महाराज उनको प्रणाम किए। नरसिम्हा देव विघ्न विनाशक है, भगवान की सेवा में भक्ति में किसी भी प्रकार का बाधा विघ्न ना आए इसलिए नरसिम्हा देव प्रकट हुए थे। ठीक है, वो स्वयं भी भगवान है। आमतौर पर लोग गणेश जी का उपासना करते हैं विघ्न विनाशक के रूप में, विघ्न विनाशक। गणेश जी के पास का ये जो पावर है विघ्न विनाश करने का वो नरसिम्हा देव से प्राप्त होता है। गणेश जी नरसिम्हा देव का उपासना करते हैं जिससे नरसिम्हा देव वो पावर उनको ट्रांसफर करते हैं, फिर वो लोगों को देखभाल करते हैं। जो विष्णु के आराध्य आराधक होते हैं या वैष्णव होते हैं दे वो लोग डायरेक्टली भगवान नरसिम्हा देव को पूजा करते हैं, किसी भी चीज के तकलीफ में रहते हैं तो नरसिम्हा देव प्रकट होते हैं। फिर मंदिर का प्रतिष्ठा हो जाता है, इंस्टॉलेशन भगवान जी का विग्रह को वहां से, गुंडीचा मंदिर है ना अभी, वहीं पे भगवान जी का विग्रह बनाया गया था, रानी वहीं रहती थी इसलिए वो मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर बनाया गया। रथ यात्रा के टाइम बोलते हैं उड़िया उड़ीसा में कि मायके गए हैं जगन्नाथ करके, हाँ मायके मतलब वो जगह है गुंडीचा मंदिर, क्योंकि गुंडीचा मंदिर राजा इंद्रदुम्न ने भगवान को एक वर मांगा था कि भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा कोई लड़का नहीं होना चाहिए। भगवान बोले कि ठीक है, क्योंकि कोई लड़का होगा तो वो फिर दावा करेगा कि ये मंदिर मेरा है, मेरे बाप का है, ये संपत्ति मेरे पिताजी का है, ये विग्रह मेरे पिताजी का है, ये किसी का नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, इसलिए मेरा कोई संतान नहीं होना चाहिए। मगर माँ का हृदय एकदम दुखी हो गए क्योंकि वो माता हमेशा संतान चाहती है। तो ये रानी गुंडीचा का ये दुख को देख के जगन्नाथ बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम तीन आपके बच्चे हैं, साल में एक बार आपके पास आएंगे, आपके घर में रहने के लिए आएंगे, 7 दिन रहेंगे आपके घर में। हाँ तब रानी गुंडीचा, हाँ 7 दिन, रास्ते में 2 दिन, 9 दिन, 7 दिन घर में रहेंगे। तो सात दिन रहेंगे और रानी खुश हो गई, इसलिए वो मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर पड़ा। तो फिर वो मंदिर से वहां लेना था उनको, जगन्नाथ जी को लेने के लिए रथ चाहिए, तो रथ रत्न का होना चाहिए। इस संसार में कोई रत्न जड़ित रथ नहीं बना सकता, लकड़े का बना सकते हैं। इसलिए इंद्रद्युम्न राजा ने उसको विश्वकर्मा जी को बुलाया, हेवनली इंजीनियर है, स्वर्ग के इंजीनियर है उनको। हाँ, रत्नों का मंदिर, रत्नों का रथ एक है अभी उड़ुपी, उड़ुपी कर्नाटक में है, उड़ुपी जाएंगे, वो हीरो का बना हुआ एक रथ है। हाँ, वो एकदम से सील करके रखते हैं, छोटा सा रास्ता देख उधर है देखने के लिए। अगर कोई बहुत बड़ा स्पॉन्सर करते हैं फेस्टिवल के लिए, वो रथ में भगवान को बिठा के वो घुमा रथ यात्रा करते हैं। और कई साल लगा था उनको बनाने के लिए, अभी है पूरे भारत में वहीं पे है, हीरो से बना हुआ रथ, हीरा ही नहीं कई सारे मैक्सिमम हीरा लगा हुआ उसमें, कई साल लगा था उनको बनाने के लिए, अभी भी देख सकते हैं। तो उस समय विश्वकर्मा आके रथ बनाए, जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर से अपने मंदिर में लाए, फिर वहां पे जगन्नाथ जी को रख के, वो दिन है फर्स्ट डे, जगन्नाथ जी को ब्रह्मा जी ने जब ही मंदिर में स्थापना किया, आज के दिन जगन्नाथ जी ने इसी रूप को स्वीकार भी किया था आज के दिन, इसीलिए आज के दिन को ये ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान इंद्रद्युम्न राजा को कहते हैं, हे राजा मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए आज के दिन मुझे अभिषेक करके मेरा पूजा करो, ऐसा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है राजा इंद्रद्युम्न को। इसीलिए तब से लेके अद्यावधि अभी तक भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। हाँ, तो स्नान यात्रा का एक विधि होता है, कैसे, जगन्नाथ मंदिर के नॉर्थ गेट में जिसको एलिफेंट गेट कहते हैं, उसकी लेफ्ट साइड में एक कुआं है, उसको सोना कुआं कहते हैं, आपने देखा सोने का कुआं। जगन्नाथ मंदिर के एलिफेंट गेट के लेफ्ट साइड में एक कुआं है, उसको गोल्डन वेल या सोने का कुआं कहते हैं। वो कुआं हमेशा ढका हुआ रहेगा, साल में एक बार खुलेगा ज्येष्ठ पूर्णिमा के पहले। ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब आज है, परसों खुला रहेगा, कल और परसों खुला रहेगा। उसमें संसार में जितने भी तीर्थ हैं सभी उस कुएं के अंदर प्रकट होते हैं। उस दिन दो लोग उस कुएं को साफ करेंगे, फिर उसमें से पानी निकालेंगे, रस्सी से नहीं उतरेंगे उसके अंदर एक व्यक्ति, और मटका मटका देकर के ऊपर देंगे। ऐसे 108 घड़े में, एक्चुअली शास्त्र में सोने का घड़ा वर्णन है, अभी पता ना, अभी मिट्टी का घड़े यूज करते हैं, घड़े में वो 108 पानी भर के, वो एक घर है उस गृह में, अधिवास गृह कहते हैं उसको, मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहला जो मंदिर आता है वो उसके अंदर रखेंगे। उसमें कर्पूर चंदन और अलग प्रकार के सुगंधित तैलों को डालकर उसके ऊपर एक एक नारियल रखेंगे, उस 108 घड़ा रात को रखा जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर कुआं भी बंद हो जाएगा, फिर रात्रि में भगवान जी का शयन होगा। दूसरे दिन सुबह भगवान जी को ड्रेसिंग करके वो ले जाएंगे स्नान मंडप, एक अलग सा जगह होता है जहां पे भगवान जी का स्नान किया जाता है, स्नान मंडप कहते हैं, वहां ले जाएंगे भगवान जी को। जो ले जाते हैं उसको भी एक सेरेमनी कहते हैं, उसको पहंडी उत्सव कहते हैं या पहंडी विजय। पहंडी विजय कुछ नहीं है, पहंडी मतलब स्टेप्स, उड़िया में पाउंडा मतलब स्टेप्स, पाउंडा मतलब स्टेप्स, पहंडी विजय मतलब एक एक कदम चल के जाना, वो भी एक उत्सव है भगवान का। दो प्रकार के पहंडी उत्सव होता है, एक एक बार भगवान जी को एक भगवान को लेकर रखेंगे फिर आएंगे दूसरे को लेंगे, उसको गोटी पहंडी कहते हैं। कभी कभी तीनों को चारों को साथ साथ में लेके जाएंगे, उसको धाड़ी पांडी कहते हैं ऐसा। तो ले जाएंगे वहां पे, फिर भगवान जगन्नाथ जी को 35 गढ़ों से, बलदेव जी को 32 और सुभद्रा जी को 30 और सुदर्शन जी को 18 मटके में से पानी डालकर उनका अभिषेक किया जाएगा। 30 मटके के पानी उनके सर के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, पानी खत्म होते होते उनको बुखार भी आ जाएगा, क्योंकि वो कुएं का पानी बहुत कोल्ड रहेगा, बहुत ठंडा,
और लोग भक्त लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ उनको नहलाएंगे, इसलिए बेचारे जैसे ही ये उत्सव खत्म होता है वो तो तुरंत बीमार गिरते हैं जगन्नाथ, उनको फीवर आता है, इसलिए 15 दिन तक रेस्ट, कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता है। हाँ, जगन्नाथपुरी में भी और मीरा रोड में भी आप देखेंगे स्नान यात्रा के बाद मंदिर बंद, मंदिर नहीं खुलेगा 15 दिन तक नहीं खुलेगा, रथ यात्रा तक, रथ यात्रा के पहले वाले दिन खुलेगा, ऐसे स्नान यात्रा होता है। और भी कई कथाएं स्नान यात्रा के बाद, स्नान यात्रा के दिन, आज के दिन आप मीरा रोड में देखेंगे या जगन्नाथपुरी में देखेंगे जगन्नाथ का एक सुंड निकलेगा रहेगा, देखा हो फोटो कभी, उसको हस्ती वेश कहते हैं, अनेकों वेश होता है, तड़का वेश, सुना वेश, हस्ती वेश, राजा वेश, रुक्मणी हरण वेश, जगन्नाथ का अलग अलग वेश होता है, उसमें से एक है हस्ती वेश। आज के दिन जगन्नाथ में एक सुंड निकलेगा ऐसा हाथी वाला, और उसके पीछे एक कथा है, ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं हैं आज के दिन का और उसके बाद वाला। और कुछ लीलाएं शाम को सुनेंगे, है कि नहीं, शाम को महाप्रभु आएंगे वो कुछ बताएंगे, फिर बाद में समय मिलेगा तो हम बताएंगे, नहीं तो फिर कल परसों भी जगन्नाथ जी के बारे में सुनेंगे, है कि नहीं। हर साल मीरा रोड में 7 दिन का जगन्नाथ जी के बारे में प्रवचन हुआ करता, इस बार भी 5 दिन का है मीरा रोड, मुझे 5 दिन वहां जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा मीरा रोड में जगन्नाथ जी का कथा करने, मगर शायद मैं 2-3 दिन जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी वो गौर कृष्ण प्रभु आ रहे हैं उसके लिए। हरे कृष्ण। स्नान यात्रा महामहोत्सव की तो सभी लोग कृपया 6 बजे तक आ जाइएगा, सभी लोग भोग लेकर, क्योंकि 6:15 तक अभिषेक प्रारंभ कर देंगे, तभी जाके 7 बजे